हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अब जिस आदमी पर झलक ने सबसे पहले इंजेक्शन लगाई थी, वो गुस्से से पागल हो उठा। उसने झलक के बालों को कसकर पकड़ लिया और उसके पेट पर जोरों से एक लात मार दी, जो इतनी जोरदार थी कि झलक कुछ कदम पीछे हट गई। वो पीछे खड़े बैरियर से टकराई और जमीन पर जोर से गिरी। सभी झलक की ओर गुस्से से देखने लगे, लेकिन उसका चेहरा इस वक्त काफी हद तक दर्द में भर गया था, क्योंकि उस आदमी ने बड़ी जोरों से उसे लात मारी थी। तभी वो आदमी गुस्से से झलक को एक बार फिर मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन क्योंकि झलक ने उसे ऑलरेडी इंजेक्शन दे दिया था, तो वो आदमी अपना सर पकड़कर तुरंत नीचे गिर पड़ा और साथ ही साथ उसके बगल में बैठा दूसरा आदमी भी लड़खड़ाते हुए गिर गया। अब इन दोनों को इस तरह से गिरते हुए देखकर झलक ने राहत की सांस ली थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि जरूर ये सिरिंज उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक थी। हालांकि उसने खुशकिस्मती से वक्त रहते उन दोनों गुंडों को ये वो जहरीली दवा दे दी थी। साथ साथ वो ये भी सोच रही थी कि अगर ये जहरीली दवा उसके शरीर में चली जाती तो उसका क्या होता। सीधी सी बात है, तो उसकी मौत होती या फिर उसके साथ बदसुलूकी होती। अब फिलहाल अपने आदमियों को इस तरह से गिलते हुए देखकर बाकी के दो आदमी गुस्से से झलक की ओर घूरने लगे और आश्चर्य से सोचने लगे कि वाकई हमने इस घटिया लड़की को कम आंका है। हमें इसे सीधे सीधे गोली मार देनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने जमीन पर पड़े अपने दोनों साथियों को देखा। अब उन्होंने झलक पर हमला किया और झलक की ओर चल पड़े। झलक के पेट में दर्द हो रहा था। वो अपने शरीर में दर्द को सहते हुए दांत पीस रही थी। उसने नज़र घुमाई और देखा कि एक कोने में आग बुझाने वाला मशीन रखी हुई है, लेकिन वो आग बुझाने वाली मशीन उन आदमियों के पीछे थी। अब झलक को समझ में नहीं आया कि वो वहां तक कैसे पहुंचे, क्योंकि वो आदमी तो उसकी ओर आने के लिए बढ़ रहे थे। तभी झलक उनकी ओर देखकर बोली, आगे बढ़ो, तुम लोग चाहते क्या हो? जरूर मिस्टर ओबेरॉय ने तुमसे मेरा किडनैप करने को कहा था, पर उन्होंने मुझे मारने को नहीं कहा था। वो डर के मारे बड़बड़ा रही थी और जमीन से उठने के लिए कोशिश कर रही थी। तभी एक आदमी फट से बोला, हम ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहे हैं, समझी तुम? ये कहकर एक आदमी जल्द ही उसकी ओर झपटा, लेकिन तब तक झलक ने अपने पैर के पास पड़ा हुआ एक लोहे का छोटा सा औजार उठा लिया था और सीधे उसे आदमी पर दे मारा। वो ज्यादा भारी नहीं था, क्योंकि उसे आदमी ने अपना हाथ हिलाया और वो गाड़ी के फ्लोर पर गिर गया। झलक की निगाहें इस वक्त सिर्फ उस फायर ब्रिगेड वाली मशीन पर थीं। उसे पूरा यकीन था कि अगर वो लोहे की गैस वाली फायर ब्रिगेड वाला उसके हाथ लग जाता है, तो फिर वो आसानी से इन लोगों से निपट सकती है। हालांकि उसके पेट में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था, लेकिन फिर भी इस वक्त अगर उसे अपनी जान बचानी थी तो उसे ये रिस्क लेना ही था। जो एक आदमी पहले से ही बेहोश पड़ा था, अचानक झलक ने उसके ऊपर पैर रख दिया और तेजी से उसे मशीन को पकड़ने के लिए दौड़ी। लेकिन जो दूसरा आदमी पीछे मौजूद था, उसने झलक के बालों को कसकर पकड़ लिया। जलने की वजह से झलक के बाल थोड़े छोटे काट दिए गए थे। झलक ने सावधानी से अपने रेशमी बालों को उसके हाथों से खींच दिया था और तभी खुशकिस्मती से उसके हाथों में वो फायर ब्रिगेड वाली मशीन हाथ लग गई थी और उसने तुरंत उसका सफ़ेद धुआं दोनों आदमियों के ऊपर उड़ा दिया था और एक के सर पर लोहे से वार किया था। अब वो दोनों लोग पूरी तरह से बेहोश हो उठे और वो भी अब बेहोश होकर फ्लोर पर गिर गए। तब जाकर झलक ने राहत की सांस ली, लेकिन इस बीच हुई मारपीट की वजह से एम्बुलेंस डगमगा गई थी, क्योंकि एम्बुलेंस पूरे रास्ते में सायरन की आवाज़ बजाती जा रही थी, तो पीछे जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में ड्राइवर को पता नहीं चला था। अब अचानक जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक मारे, तुरंत पीछे का दरवाज़ा खुल गया। झलक तुरंत एम्बुलेंस की गाड़ी से बाहर कूद गई। इस वक्त उसके पेट में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था। फिर वो अपनी दर्द भरी आँखों से उस एम्बुलेंस को तेज़ी से आगे बढ़ते हुए देख रही थी। वे एक मॉडर्न लड़की थी जो अपनी कार से बाहर निकली थी। वो देखने में काफी खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर सब पता चल रहा था कि वो जरूर किसी अमीर घर से आने वाली है। अब जैसे ही वो लड़की वहां आई, वो झलक पर भड़कते हुए बोली, है लड़की, क्या तुम्हें मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी? कहीं और नहीं मिल सकती थी जाकर? उसने झलक पर गुस्सा होते हुए कहा। तब झलक जल्दी से उस लड़की की ओर देखकर रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए, क्या आप मुझे कहीं छोड़ सकती हैं? अब वो लड़की हैरानी से झलक को गौर से देखने लगी, क्योंकि इस तरह से वो झलक को लिफ्ट देकर अपने लिए किसी तरह की कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने उसे लिफ्ट देने से साफ मना कर दिया और एटीट्यूड से बोली, देखो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, अगर तुम कहो तो मैं एम्बुलेंस को फ़ोन करके ज़रूर यहाँ बुला सकती हूँ। अब झलक मन ही मन परेशान होकर बुदबुदाई, एम्बुलेंस से बचकर ही तो यहाँ आई हूँ। झलक सीधे तरीके से पुलिस स्टेशन भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि क्या भरोसा, उसके पेरेंट्स मिस्टर एंड मिसेस ओबेरॉय ने ऑलरेडी पुलिस वालों को भी खरीद लिया हो। तब झलक उस लड़की की ओर आंस भरी नज़रों से देखकर बोली, अच्छा तो ठीक है, लेकिन क्या आप मुझे प्लीज़ एक फ़ोन करने देंगी, प्लीज़? उस लड़की को अपना फ़ोन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने आसानी से अपना फ़ोन झलक को दे दिया। अब झलक ने जल्दी ही फ़ोन किसी और को नहीं बल्कि अपने बेस्ट फ्रेंड अर्जुन को मिला दिया था और फ़ोन पर इन्फॉर्म करके उसे बता दिया कि इस वक्त वो किस जगह पर मौजूद है और वो आकर उसे यहाँ से पिकअप कर ले। उसे फ़ोन करने की कोशिश की है, ये वाली बात उसने बड़ी ही धीमी आवाज़ में अपने दोस्त अर्जुन को बता दी थी। लेकिन इससे पहले कि वो अर्जुन को पूरी बात बता पाती, एक बार फिर उसके कानों में एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अब झलक घबरा गई, क्योंकि वो एम्बुलेंस जो कि थोड़ी सी दूर जा चुकी थी, शायद उसके ड्राइवर को पता चल चुका था कि झलक कहीं नीचे गिर गई है और इसीलिए वो झलक को वापस ढूंढने के लिए वहाँ आ रहा था। अब तो झलक काफ़ी डर गई और वो उस लड़की के आगे हाथ जोड़ते हुए डरी हुई आवाज़ में बोली, प्लीज़ आप मुझे अपनी गाड़ी की डिग्गी में छुपा लीजिए, प्लीज़ प्लीज़। अब वो लड़की सोचने पर मजबूर हो गई, क्योंकि उसने उस लड़की की गाड़ी को एम्बुलेंस के ठीक पीछे देखा था जिसमें झलक थी और उसे झलक एम्बुलेंस में से उतरते हुए देखा था और झलक के हालात देखकर उसे साफ पता चल रहा था कि इस वक्त उसके पीछे कुछ लोग पड़े हैं। इसलिए उस लड़की ने झलक को बेरुखी नज़रों से देखा और बोली, ठीक है, मेरी गाड़ी की डिग्गी में छुप जाओ। और बिना झिझके जल्दी ही झलक उस लड़की की गाड़ी की डिग्गी में छुप गई थी और वो लड़की जल्द ही झलक को अपने साथ लेकर रवाना हो गई थी। वहीं दूसरी ओर, तब सिद्धार्थ खुराना इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसे झलक का कहीं से कोई अता पता नहीं चल रहा था। जिस तरह से उसके अपार्टमेंट में आग लगी और अब इस तरह से झलक का हॉस्पिटल से गायब होना और साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज का अचानक गायब होना, तो वो समझ चुका था कि ज़रूर किसी ने झलक के खिलाफ बड़ी गहरी साजिश रची है। फ़िलहाल वो अभी कुछ सोच रहा था कि तभी एकदम से उसका फ़ोन एक बार फिर बजने लगा। फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि उसके असिस्टेंट रौनक का था। रौनक ने फोन पर जल्दी से सिद्धार्थ को झट से बोला, सर हमारे जो विदेश में यानी कि स्पेन की जो ब्रांच है वहां पर कुछ ना कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको जल्द से जल्द स्पेन के लिए रवाना होगा। ये बोलकर रौनक ने जल्दी से फोन काट दिया था। अब सिद्धार्थ खुराना, जो कि पूरी तरह से वर्कहोलिक था, अपने काम के आगे वो कभी कुछ नहीं देखता था, लेकिन उसका दिल आज विदेश जाने से साफ इनकार कर रहा था, क्योंकि वो झलक का पहले पता लगाना चाहता था।